आज का रात्रि क्लास है 18/1/1966। इसी तारीख को रिवाइज हुआ 1967 में। खेल अभी पूरा हो, फिर से रिपीट होने का है। ये फिर से जो रिपीट होने का खेल है, वो पहले कब हुआ था? जो अभी पूरा हो रहा है। आज से 40 साल पहले भी ये खेल शुरू हुआ था। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में अभी वो खेल पूरा हो, फिर से रिपीट होने का है। ब्रह्मा ने जो तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची 1976 से, एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि, बीज रूप आत्माओं की सृष्टि, उसका खेल अभी पूरा हो, फिर से रिपीट होने का है। दुनिया की तो गत और मत, दुनिया की गति तो है ही नहीं। इसलिए फिर कहेंगे दुनिया की दुर्गति। गतिशील नहीं है, वो ब्राह्मणों की दुनिया की गति अभी दुर्गति कहेंगे। असत्य मत पर चलने वाली कहेंगे। सत्य की मत पर चलने वाली नहीं है। इस दुनिया में सत्य कौन है, असत्य कौन है? सत्य वही है जो एक गॉडफादर सत्य कहा जाता है। एक सदगुरु सत्य कहा जाता है। बाकी सब गुरु कैसे हो गए? असत्य हो गए। एक सदगुरु निराकार अर्थात गुरु है तो साकार होगा या निराकार होगा? है निराकार या साकार? सत्य है तो निराकार। नो संकल्प एटाल। निराकारी स्टेज, संकल्प विकल्प है, मनन चिंतन मंथन करने वाला है तो मनुष्य होता है। मनन चिंतन से परे की स्टेज है तो कहेंगे भगवान। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मननात् मनुष्य, चंचल मन के फिरावे में जो है वो मनुष्य है। चंचल मन की परिधि से जो बाहर हो गया वो मनुष्य नहीं, वो निराकार स्टेज वाला, साकार में सदगुरु कहा जाता, वो बाप, वो टीचर, वो सदगुरु एक ही है। तो उसको पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, उसकी मत पर चलते हैं तो श्रीमत। अगर उसकी मत पर नहीं चलते हैं, नहीं जाना, नहीं माना, तो कहेंगे आसुरी मत। आ माने नहीं, सुर माने देवता। सुर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो देवताएं एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं। एक दूसरे के विपरीत नहीं चलते। एक ने कही, दूसरे ने मानी। अगर झगड़ते हैं तो एक की मत पर चलने वाले हैं या अनेक असुरों की मत पर चलने वाले हैं? ये अनेकों की मत पर चलने वाले बेचारे अभी तो जानते ही नहीं हैं। किसको नहीं जानते? कि वो एक जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो इस मनुष्य सृष्टि पर एक सेकंड में निराकारी स्टेज धारण करने वाला कौन है? और रास्ता तो एक ही है, यही बताया है। जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति रोड नाम रखा जाता है, त्रिमूर्ति सेवा का रास्ता। ये खाली लफ्ज नहीं बताते हैं, अर्थ भी बताते हैं। लफ्ज शब्द को कहा जाता है, शब्दों का अर्थ भी होता है। त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस, किसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस? चैतन्य की यादगार में या जड़त्वमय बुद्धि की यादगार में? तो वो चैतन्य बुद्धि एक होगा त्रिमूर्ति हाउस या अनेक हाउस का मिल करके नाम है त्रिमूर्ति हाउस? कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, तो शिव जिसका अर्थ है कल्याणकारी, सारी मनुष्य शक्ति का कल्याणकारी, मनुष्य मात्र का कल्याणकारी और प्राणी मात्र का कल्याणकारी। कैसे कल्याण करता है? संग के रंग से तामसी से सात्विक बनाई देता है। ऐसा है वो त्रिमूर्ति हाउस। हाउस चैतन्य है या जड़ है? है? वो तीन मूर्तियों का एक हाउस चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। नाम है त्रिमूर्ति हाउस। जैसे शरीर भी आत्मा का घर है, ऐसे ही वो तीन मूर्तियों का एक ही हाउस है जिसे त्रिमूर्ति शिव का हाउस कहा जाता है। तो शिव एक है या अनेक आत्माओं का नाम शिव है? आत्मा एक है लेकिन तीन रूपों में व्यक्त होती है। हर मनुष्य की आत्मा भी एक है लेकिन तीन कार्य करने के कारण ओम मने आत्मा कहा जाता है। आ मने ब्रह्मा स्थापनाकारी, ओ माने विष्णु पालनाकारी, मा माने महेश विनाशकारी, दुर्गुणों का विनाशकारी, श्रेष्ठ गुणों की स्थापनाकारी और विनाश होने के बाद श्रेष्ठ बचेगा या भ्रष्ट बचेगा? भ्रष्ट का विनाश, श्रेष्ठ की स्थापना हुई। तो जो श्रेष्ठ देवताएं बचते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं, उनकी पालना। तो हर मनुष्य मात्र की आत्मा को ये तीन कार्य इस रंगमंच पर जरूर करने होते हैं। कब करने होते हैं? जब परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल गॉड फादर सभी आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं, वो भी यही परंपरा चलाते हैं। क्या कि मैं आत्मा तो एक हूं लेकिन प्रैक्टिकल में तीन कर्तव्य कराता हूं। आत्मिक रूप में करावनहार हूं और जिन तीन मूर्तियों के द्वारा इस संसार में व्यक्त होता हूं उनके द्वारा क्या हूं है? क्या गाया जाता है मुझे? करण और करावनहार गाया जाता है। तो जो करणहार भी है और करावनहार भी है, करता भी है और कराता भी है, तो उसके द्वारा दिया गया महामंत्र कौन सा है? है मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किस आत्मा ने कहा? आत्माओं के बाप ने कहा या मनुष्य आत्माओं के बाप ने कहा? है क्यों? आत्माओं के बाप शिव क्यों नहीं कह सकते? मन मना भव है क्योंकि उनको मन चलाए मन होता ही नहीं, वो तो सदा अमन रहने वाला है, अमन चैन में रहने वाला, कभी भी बेचैन नहीं होता। इस पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है तो भी कभी बेचैन होता है? नहीं होता है। तो जो बेचैन होता है और बेचैन होने वालों में सबसे जास्ती बेचैन होता है, क्योंकि मनुष्य ही बेचैन होते हैं। तो बेचैन होने वाले मनुष्यों का भी कोई बीज रूप बाप है। वो बीज रूप बाप जो बेचैन होने वाला है वो अपूर्ण पुरुषार्थी है या संपूर्ण पुरुषार्थी है? 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 अरे बेचैन होने वाला अपूर्ण पुरुषार्थी ही होगा ना। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए जो कुछ भी करे, प्रयास करे और उस प्रयास में 100% सफल हो जाए तो संपूर्ण आत्मा या अपूर्ण आत्मा? संपूर्ण आत्मा। और संपूर्ण आत्मा है तो परम पुरुष के समान है। जो शिव बाप परम पुरुष है, सदा काल परम पुरुष है, ऐसे नहीं आज है कल नहीं है। तीनों काल में परम पुरुष है, उससे परे से परे की स्टेज में रहने वाला कोई पुरुष है ही नहीं। वो आकर कहता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा, है आप समान बनाकर जाऊंगा। जो लिखा भी है कवियों ने विद्वानों ने, यही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। माना सुप्रीम सोल गॉड फादर जिसके तीनों काल की सच्चाई को जानता है, उसको अपना सारा अखूट ज्ञान का भंडार दे देता है। यही जानव अर्थात जिसको जानते हो उसको जानकारी दे देते हो। कौन कौन किसको जानता है? तीनों कालों को जानता है, है? शिव बाप जिसको जानता है उसके तीनों कालों का ज्ञान उसे दे देता है। यही जानो ते ही देव जनाई, और जो तीनों काल का अकूट ज्ञान ले लेता है वो जानत तुम ही हुई जाई। वो जब तीनों काल का ज्ञान ले लेता है तो तुम्हारे समान ही हो जाता है। किसके समान है? शिव सुप्रीम सोल बाप के समान हो जाता है। इसलिए गीता में भी कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम नित्य विधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा ये जो शरीर रूपी रथ है ये क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्या? इस शरीर रूपी रथ के आदि मध्य अंत को जानने वाला, इसका आगा पीछा जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात ज्ञ माने जानने वाला, जानकार। शरीर रूपी क्षेत्र का जानकार कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में एक कथा भी आती है, ये शरीर जिस तन का मुकर्रर आधार परम पिता शिव लेते हैं, वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ जो परम पिता शिव ज्योति बिंदु का बड़ा रूप है, लिंग रूप, जिसके लिए बोला मेरे सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो, हैं? बड़े रूप को ही याद करो। यही बात रामायण में तुलसीदास ने कही। क्या? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय अरे भव संभव खेदा। सगुण माने साकार, बड़ा रूप, शरीर रूपी क्षेत्र, और अगुण माने निराकार, जिसमें कोई गुण अवगुण नहीं होता, निर्गुण कहा जाता है। इन दोनों में अर्थात साकार रूप हो या निराकार रूप हो, दोनों का जब संपन्न रूप संसार में विख्यात होता है सभी मनुष्य मात्र के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, तो साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रह जाता। क्यों? जिसने निराकार को जाना वो निराकार तो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी, माना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों काल में पार्ट बजाने वाला ऑलराउंड पार्टधारी, जो भी है वो भी त्रिकालदर्शी बनता है, क्योंकि पार्टधारी आत्मा तो है कि नहीं है? है? रंगमंच पर आत्मा पार्ट धारण करने वाला है या नहीं है? अब वो चाहे सुप्रीम सोल हो, चाहे वो मनुष्य मात्र में कोई भी नीचे से नीचे, मध्यम से मध्यम, ऊंचे से ऊंच हो, सभी पार्टधारी हैं, परंतु भगवान बाप कहते हैं ब्रह्म महावाक्य मुरली में कि जो भी पार्टधारी हैं, अगर अपने पार्ट का जानकार हैं, अपने आत्मा रूपी पार्टधारी के अनेक जन्मों के जानकार हैं कि किस जन्म में हमने कौन कौन से शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाया और क्या क्या पार्ट बजाया, अगर इस बात के जानकार हैं तो होशियार पार्टधारी है, अगर नहीं जानते हैं तो बेवकूफ पार्टधारी। तो बाप ने जो कहा मैं त्रिकालदर्शी हूं, तो तुम बच्चों को भी नंबर बार त्रिकालदर्शी बनाता हूं, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई तो बच्चा होगा जो शिव बाप के अखूट ज्ञान भंडार को धारण करता होगा, ग्रहण करता होगा। जो ग्रहण करता है तो वो भी त्रिकालदर्शी हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ त्रिकालदर्शी नहीं हुआ, मास्टर त्रिकालदर्शी भी हुआ, प्रैक्टिकल में ऑलराउंड पार्टधारी। शिव जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो प्रैक्टिकल में चारों युगों में पार्ट नहीं बजाता। इसलिए वो त्रिकालदर्शी है लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। जो चारों युगों में ऑलराउंड पार्ट बजाता है वो शरीर रूपी क्षेत्र कैसा है, 100% पक्का पार्टधारी, क्योंकि उसे पहले पहले अपने तीनों काल का ज्ञान हो जाता है पार्ट का। इसलिए बोला जानकारी हो जाती है तीनों काल के पार्ट की मनुष्य शक्ति के बाप को, परंतु वो जानकारी पहले से थी या बाद में हुई है? है? पहले या बाद में? बाद में हुई। शिव बाप ने जब अपना अकूट ज्ञान भंडार का वर्षा दिया, बाप माने वर्षा, जो वर्षा ही न दे वो बाप कैसा, तो अकूट ज्ञान के भंडारी बाप ने जिस बड़े बच्चे को अकूट ज्ञान का भंडार दिया उस बच्चे का काम के आधार पर नाम रख दिया, जो गीता में भी प्रसिद्ध है। क्या नाम रख दिया? प्रैक्टिकल पार्ट के आधार पर नाम रख दिया। जितने भी शास्त्रों में नाम हैं, वो काम के आधार पर नाम है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, अटल अचल रहने वाला, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाला, बाहुबल का दुशासन दुष्ट शासन करने वाला, कोई नियम कानून को नहीं मानने वाला, तो जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। तो भगवान बाप भी नाम देते हैं, क्या है, क्या नाम देते हैं उस पार्टधारी का, क्या नाम देते हैं जो तीनों कालों में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है और त्रिकालदर्शी भी बन जाता है, है? उसका नाम देते हैं शिवलिंग। क्या नाम देते हैं? शिवलिंग। किसका लिंग? शिवलिंग। शिव को लिंग होता भी है, है? अरे शिव को इंद्रियां होती हैं, शिव को शरीर होता है, नहीं होता है तो शिवलिंग कैसे? शिव तो सदा शिव है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और जो आत्माएं हैं उनके आत्मा का नाम शिव नहीं होता, या आत्मा का नाम होता ही नहीं, शरीर का नाम होता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हैं तो उनका नाम होता है। जो मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिन्होंने अव्वल नंबर का पार्ट बजाया है, उसका नाम संसार में विख्यात हो जाता है। जैसे इब्राहिम परम धाम से, आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से आने वाली संपूर्ण आत्मा के पहले जन्म का नाम क्या हुआ, है? अब्राहम, तो वो नाम संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके बाद उसने और भी तो जन्म लिए कि नहीं लिए? जन्म तो लेता है, लेकिन वो नाम प्रत्यक्ष नहीं होते, मुख्य नाम वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऐसे ही भारतीय शास्त्रों में एक नाम है जो ऑलराउंड पार्टधारी है, क्या सृष्टि के आदि में भी होता है और अंत में भी, महामृत्यु के समय भी होता है, और आत्माएं महामृत्यु के समय इस सृष्टि पर अपने शरीर से रहती ही नहीं, सबके शरीर अव्यक्त हो जाते हैं, उसका शरीर व्यक्त रहता है, जिसके किए लिंग की पूजा होती है। किसके लिंग की पूजा होती है? है शिव के लिंग की पूजा होती है, शिव को लिंग होता है, है? शिव के लिंग की पूजा नहीं होती, शिव समान जो स्टेज धारण कर लेता है उसके लिंग की पूजा होती है। उसका लिंग है, लिंग से उस भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से कर्म भी करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी योग बल के आधार पर स्टेज कैसी है? निराकारी या देह अभिमान वाली? निराकारी स्टेज। लिंग से जो भी कर्म करता है उसका कोई सुख नहीं भोगता, सुख भोगता है तो जन्म मरण के चक्र में आना पड़े, सुख भोगने वाला दुख भी भोगता है, तो सुख दुख से दोनों से उस स्टेज में न्यारा हुआ या अटैचमेंट वाला हुआ, न्यारा हुआ तो जैसे शिव है कर्म से न्यारा है, अच्छा कर्म करने से भी न्यारा है और पाप कर्म करने से भी न्यारा है। वो अकर्ता है कौन? शिव निराकार। उसको अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का कोई बंधन नहीं लगता। जैसे वो करता है वैसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई अव्वल नंबर एक आत्मा को, मना अपने बड़े बच्चे को, वो सारी ताकतें प्राप्त कराए देता है। जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर है होनी ही चाहिए, वो सारी ताकतें अगर हैं तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, सारे विश्व धर्मों की सभी आत्माओं को नाथने वाला कहा जाता है। जैसे कोई बाप होता है तो बाप तभी ही बनता है जब माता हो, बिना माता के बाप होता है? है माता है तो बाप है, माता ही नहीं बनाई तो बाप कैसे हो गया? तो भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आ रही है कि जिसको भी माता बनाते हैं उसको नथनिया डाल देते हैं, क्या कर देते हैं? नाथ डाल देते हैं। जैसे बैल से खेती का काम लेते हैं तो क्या कर देते हैं? है बैल की नाक में क्या कर देते हैं? अरे बैल की नाक में नाक डाल देते हैं ना। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। बैल है अड़ियल बैल, और अड़ियल बैल सांड कहा जाता है। उसको अगर नाक नहीं है तो कंट्रोल में नहीं आता। नाक डाल देते हैं तो कंट्रोल में आता है। तो शिव बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं, मैं जब आता हूं तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता हूं उसको ब्रह्मा नाम देता हूं। चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा के तन, दादा लेखराज के तन में प्रवेश करता है तो वो नाम क्या दे देता है? है ब्रह्मा नाम दे देता है। तो पुरुष तन ना, पुरुष तन होते हुए भी काम कराना है तो जैसा काम कराना है वैसा नाम भी देना पड़े ना, है? तो नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी मां, माने मां संसार की सबसे बड़े से बड़ी सहनशीलता के गुणों को धारण करने वाली मां। दुनिया में जितनी भी माताएं होती है कौन सा गुण धारण करती है पुरुषों के मुकाबले? है सहनशीलता का गुण धारण करती है। तो वो ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां, बड़ी मां हो गई। कौन कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा कहो या सतयुग में कृष्ण के नाम से जन्म लेने वाली आत्मा कहो, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कहो, तो पहला पत्ता ही ब्रह्मा हो गया। हो गया या नहीं? हो गया। जब पहला पत्ता ही ब्रह्मा है और उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला परम ब्रह्म है। क्या परम ब्रह्म? परम माने बड़े से बड़ा, ब्रह्म माने ब्रह्म। तो जो सृष्टि की इतनी ऊंची से ऊंची आत्मा है, पत्तों में भी सबसे ऊंचा पत्ता और बीजों में भी सबसे बड़ा बीज रूप बाप, वो ही ब्रह्मा का पाठ अदा करने वाली अव्वल नंबर आत्माएं हैं। तो इससे साबित होता है कि भारत में भगवान जहां बाप जब आते हैं, सुप्रीम सोल गॉडफादर, तो जो भी मनुष्य आत्माएं भारत की कही जाती हैं, असल में भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो ज्ञान की रोशनी में ही लगी रहने वाली आत्माएं हैं, वो हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में कितनी? 4.5 लाख। कितनी आत्माएं? 4.5 लाख। दिन के सितारे या रात के सितारे? है दिन के सितारे। जो दिन के सितारे अपने ज्ञान की रोशनी को शिव की रोशनी में अर्पण कर देते हैं, अपना ज्ञान नहीं कहते, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, किसको प्रत्यक्ष करते हैं? है संसोज फादर, वो ज्ञान सूर्य बाप के असल सूर्यवंशी बच्चे हैं और दूसरे हैं चंद्रवंशी सितारे। चंद्रमा रात में जब उगता है तो राका पति कहा जाता है। राका माने रात, पति माने स्वामी। रात का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। तो चंद्रमा की प्रकाश में जो पलने वाले सितारे हैं वो हैं रात के सितारे। वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या चंद्रमा को प्रत्यक्ष करते हैं? 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 अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। यही कारण है कि ज्ञान चंद्रमा अमावस्या के दिन है रोशनी वाला रहता है कि रोशनी से हीन हो जाता है, तो वो रात के सितारे अपने बाप की दाढ़ी की लाज रखने वाले हैं या लाज नहीं रखने वाले हैं? वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। क्या ज्ञान चंद्रमा के बच्चे जो चंद्रवंशी बच्चे हैं वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने बाप ज्ञान चंद्रमा को प्रत्यक्ष नहीं करते? इसलिए जो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है वो ब्रह्मा की पूजा संसार में नहीं होती, मंदिर यादगार नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती और कोई भी दुनिया में उस स्वरूप को याद भी नहीं करते। जबकि जो असल में ज्ञान सूर्य है चैतन्य, जड़ सूर्य की बात नहीं, जो सदा ज्ञान सूर्य है, कौन है सदा रोशनी वाला, सदा शिव कहा जाता है, सदा शंकर नहीं कहा जाता, क्या कहते? सदा शिव। वो सदा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो उस सदा शिव को जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। हैं? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली है, आत्मा रूपी सितारे के रूप में जो सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहती है। कभी रोशनी से हीन नहीं होती। वो कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती तो है लेकिन कभी अंधकार का पार्ट नहीं बजाती, अज्ञान की बात नहीं सुनाती। क्या ज्ञान की रोशनी ही देती है या अंधेरा कायम रहेगा? अंधेरा कायम रखवाती है। हैं? कौन है? अरे शिव, सदा शिव। वो सदा शिव इस सृष्टि पर आता है तो असल में जो पार्ट बजाता है, जिस युग में पार्ट बजाता है उस युग में सदा ज्ञान सूर्य है। कि कभी ज्ञान से रहित पाठ बजाता है, अज्ञानता का पाठ बजाता है नहीं, लेकिन उसका ये विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं भले सिर्फ संगम युग पर ही आता हूं तो भी तुम बच्चों को आप समान जैसे मैं सदा ज्ञान सूर्य हूं ऐसे तुम बच्चों को भी ऐसी संपन्न आत्मा बनाता हूं कि जब से इस संगम में तुम संपन्न आत्मा बनते हो तब से लेकर के जब तक ये संगम युग रहेगा तब तक उस शूटिंग पीरियड में तुम कैसा पाठ बजाएंगे, ज्ञान सूर्य का पाठ बजाएंगे या अंधकार का पाठ बजाएंगे, ज्ञान सूर्य का पाठ बजाएंगे। तो जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा है मनुष्य आत्माओं के बीच में, उसको गीता में टाइटल दिया है मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं, है सूर्य को ज्ञान देता हूं। उसका नाम प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य है, क्या वो प्रैक्टिकल में हर मनुष्य आत्मा की ऐसी स्टेज धारण कराता है, क्या करावनहार होकर क्या कराता है हर मनुष्य आत्मा की ऐसी स्टेज धारण कराता है संगम युग में कि वो स्टेज से वो आत्माएं 4.5 लाख कभी नीचे स्टेज में नहीं आती। वो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्य समान ही होंगे या अंधकार देने वाले होंगे, ज्ञान सूर्य वाले। जैसे ज्ञान सूर्य सूर्य कलाओं में बांधा जाता है, चंद्रमा तो कलाओं में बांधा जाता है, सूर्य है चंद्रमा कलाओं में बांधता है, लेकिन सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। उसके लिए कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, क्या वो कलाओं से अतीत है। जब कलाओं से अतीत है तो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है। कैसा सुख? इंद्रियों से परे का सुख देने वाला। जो दूसरों को इंद्रियों से परे का सुख देने वाला है वो स्वयं इंद्रियातीत होगा या नहीं होगा, है वो स्वयं तो जरूर पहले इंद्रियातीत बनेगा, इंद्रियों से अतीत स्टेज में पार्ट बजाएगा। इंद्रियों के कर्म में बंधकर रहने वाला नहीं, इंद्रियां उसे अपने कर्म में बांध नहीं सकती। सुख और दुख का इंद्रियां अनुभव करा ही नहीं सकती। तो ऐसा कलातीत जिसके बच्चे भी कलातीत नंबरवार होते हैं, कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा बच्चा, तो जो आसुरी मत पर चलने वाले हैं, जो एक सत्य है, इस सत्य में सत्य कितने हैं? एक सत्य है 100%, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो भारतीय परंपरा में शंकर के नाम रूप से गाया जाता है, वास्तव में भक्त नहीं जानते कि जो शंकर का पुरुषार्थी रूप है वो अपूर्ण है या संपूर्ण है, है? पूर्ण है। अगर शंकर का को जो स्वरूप है, हाथ पांव नाक आंख कान वाला संपूर्ण रूप है, तो शिव के मंदिर में लिंग की जगह शंकरों को क्यों नहीं बैठाया गया है? दृढ़ पुरुषार्थी है माने दृढ़ता है कि मैं पुरुष अर्थ माने आत्मा के अर्थ कर्म करना तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आत्मा संपन्न शिव समान नहीं बन जाऊंगा। ये दृढ़ता तो है लेकिन पुरुषार्थी है या नहीं है और अधूरा है या नहीं है? अधूरा है। इस बात को भक्त लोग नहीं जानते इसलिए उन्होंने शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। वास्तव में शिव की आत्मा अलग जिसे सदा शिव कहते हैं और शंकर की आत्मा अलग जिसमें कई आत्माओं के पार्ट का संकरण हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, इसलिए उसे शंकर कहते हैं। जैसा काम वैसा नाम पड़ता है। इस बात को भक्त लोग नहीं जानते। भले मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? चंद्रमा दिखाते हैं कि हाँ मस्तक पर है? अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है आत्मिक रूप में तो भी मस्तक पर बैठा हुआ है। अधूरा है तो देवान वाला है या नहीं है? है? देवान वाला है तो भी मस्तक पर बैठा हुआ है, सर पर चढ़ा बैठा है और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं शंकर को, दिखाते हैं या नहीं? जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं वो भी यादगार है, शिव नेत्र की यादगार है, पड़ा हुआ नेत्र नहीं है दाई ओर बाई ओर का, खड़ा हुआ नेत्र है। क्या क्या आत्मिक स्थिति में सदैव खड़ा हुआ है कि आत्मिक स्थिति से नीचे गिर जाता है? तीसरा नेत्र शिव नेत्र सदा खड़ा हुआ है तो किस आत्मा की निशानी? शिव की निशानी। जिसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है वो ज्योति बिंदु शिव वो उस शरीर रूपी रथ में तीसरी आत्मा है। तो तीन आत्माओं का मिश्रण हुआ ना, शंकरण हुआ या नहीं हुआ? तो इसलिए नाम शंकर पड़ता है। तो जब तक मिश्रण है तब तक शुद्ध शिव है या नहीं है? बताओ। जब तक मिश्रण है तब तक शुद्ध है, 100% शुद्ध आत्मा सत्य कहें या असत्य कहें? हैं? हैं? जोर से बोलो ना। जब तक मिश्रण है तब तक सत्य है या असत्य है? असत्य है। जब मिश्रण रहित तो हो जाए, एक ही आत्मा सत्य हो जाए, जैसे शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। कौन? सत्यम शिवम सुंदरम शिव कहा जाता है, शंकर तो नहीं कहा जाता। कहा जाता है? नहीं, कोई देवता नहीं कहा जाता। तैतीस करोड़ देवताओं में भी कोई आत्मा नहीं है जिसका नाम शिव हो। सब के शरीरों का नाम, शंकर के भी शरीर का नाम या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम। एक ही सत्त आत्मा है जो त्रिकालदर्शी इसलिए है कि उसको अपना शरीर होता ही नहीं, इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का जानने वाला है, देह के बंधन में आता ही नहीं है, तो पाप पुण्य का हिसाब बनता ही नहीं है। जब पाप पुण्य का हिसाब नहीं बनेगा तो गर्भ में आएगा ही नहीं, गर्भ के बंधन में नहीं आता, इसलिए क्या कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। क्या? स्वयंभू, स्वयं होने वाला, स्वयं प्रत्यक्ष होने वाला, स्वयं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला। उसको कोई जन्म देता नहीं है, उस सब का जन्म दाता है या किसी से जन्म लेता है? है? कौन? कौन? शिव। कोई कहेगा जन्म लेने लेने का तो सवाल ही नहीं है आत्माओं का, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कहाँ जन्म लेती है मरती है? शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, ठीक है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, लेकिन अज्ञान युक्त तो बनती है, है? अज्ञानी बनती है या नहीं बनती है? अज्ञानी बन गई तो अपने आप को जानती है या नहीं जानती है? नहीं जानती। जो अपने आप को ही नहीं जानती है तो क्या कहें, मरे हुए के समान, यह जीवित है मरे हुए के समान। तो वो ज्ञान आत्मा को देने वाला कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु चैतन्य हो, वो ही बाप हो गया। क्या? आत्मा का बाप कौन हो गया? जो आत्मा को आत्मा का ज्ञान देवे। बाप ही बच्चों को ज्ञान देता है, जन्म देता है, बाप से ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म मिलता है हर आत्मा को। तो आत्मिक स्थिति में आत्मा को ज्ञान देने वाला कौन है? है? शिव है। शिव आत्माओं को ज्ञान देता है, ठीक। तो आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है शिव का, आत्मा है, भाई भाई है ना, है भाई भाई, बड़ा भाई है कोई? तो जो आत्माओं में बड़ा भाई है वो बाप समान कहा जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में हिस्ट्री देख लो, राजाओं ने अपनी राजाई का वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। ये परंपरा कहां से चली है? संगम युग से चली। शिव बाप ने आकर के हम आत्मा रूपी भाइयों भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, क्या मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मनुष्य मात्र हो, सबका बाप, सभी मनुष्यों का बाप, जिसे मुसलमानों में आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस में एडम कहते हैं, आदि पुरुष, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में आदि देव कहते हैं, जो सभी धर्मों में विख्यात है, परंतु कोई जानता नहीं है कि वो आदम, वो आदिदेव, वो एडम इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है। हीरो रंगमंच के सभी सीन में हीरो पार्टधारी होता है या कोई सीन में हीरो पार्ट नहीं बजाता? हीरो पार्टधारी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। ये जानकारी देने के लिए त्रिकालदर्शी शिव को जो अजन्मा है, क्या जन्म गर्भ से लेता ही नहीं, वो आता है इस सृष्टि पर। कहां से आता है? आत्मलोक से आता है, जिस आत्मलोक में सभी आत्माओं को महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय जाना होता है। जिस आत्मलोक से सभी आत्माएं सच्चे रूपी रंगमंच पर आती रहती हैं, इसीलिए दुनिया की जनसंख्या सदैव है बढ़ती रहती है। सतयुग के मुकाबले त्रेता की जनसंख्या ज्यादा, त्रेता के मुकाबले द्वापर में जनसंख्या ज्यादा, द्वापर के मुकाबले कलयुग की जनसंख्या ज्यादा। दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये जनसंख्या लगातार क्यों बढ़ती है। अगर जानते होते तो जनसंख्या के लिए नियंत्रण करने के प्रयास नहीं करते। करते हैं या नहीं है? अरे पॉपुलेशन को नियंत्रित करने का, रोकने का हर देश प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो अगर ये मालूम होता कि ये तो व्यर्थ है, क्या? क्योंकि जो आत्माएं सतयुग त्रेता द्वापर से उतरती चली आई वो तो यहां जन्म लेती ही है, क्योंकि उन्हें आत्मलोक में जाने का रास्ता मालूम ही नहीं। और जो नई नई उतर रही हैं ढेर की ढेर, वो और ऐड होती जाती है। तो जो ऐड होती जाती हैं और पहले वाली जन्म लेती रहती है, तो जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी है या घटेगी या उतनी ही रह जाएगी? हैं? वो बढ़ेगी जरूर। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी दुनिया की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। तो इसका रहस्य दुनिया को नहीं पता है, भगवान बाप आकर के बताते। क्या? कि तुम आत्मा रूपी बच्चों का घर परम धाम है, जहां का मालिक मैं परम पिता हूं। घर का मालिक कौन होता है? पिता। तो पिताओं में परम पिता कौन है जिसका कोई पिता नहीं? वो शिव है, सभी आत्माओं का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, जिन्हें ग्रेट फादर्स कहा जाता है, और उन ग्रेट फादर्स का भी बाप एडम, जिसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप का भी बाप माने डाडे। तो उस ग्रैंडफादर का भी कोई बाप है? जो ग्रैंडफादर का भी बाप है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ जो कहा जाता है, उसका भी जो बाप है वो शिव है, एवरलास्टिंग बाप। उसके बाद फिर कोई बाप होता ही नहीं। वो बापों का बाप है, सुप्रीम गॉड फादर है, लेकिन वो सुप्रीम गॉड फादर सदा निराकार है। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी आता है, मनुष्य साकार तन में भी आता है, तो भी कैसी स्टेज में रहता है? निराकारी स्टेज में रहता है। वो निराकारी स्टेज में रहने वाला हम बच्चों को आप समान निराकारी स्टेज धारण करा के जाता है। हम बच्चों को इनको नहीं, किनको? इनके फॉलोअर्स को नहीं, किनको? चंद्रमा को, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नहीं, उनके फॉलोअर्स ज्ञान चंद्रवंशी बच्चों को भी नहीं, निराकारी स्टेज धारण नहीं कराता। कुछ न कुछ देवान में रहते। क्या प्रूफ? अरे कोई प्रूफ होगा कि नहीं होगा? क्या प्रूफ? इस बात का क्या प्रूफ कि वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और उसके फॉलोअर्स चंद्रवंशी बच्चे वो निराकारी स्टेज शरीर रहते रहते धारण नहीं कर पाते? इसका पक्का प्रूफ है? है? हाँ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसे कहा जाता है वो ही साकार शरीर छोड़ गया। उसको अब इस संगम युग में साकार शरीर अपना नहीं मिलेगा, उसके फॉलोअर्स को भी नहीं मिलेगा। तो शरीर रहते रहते निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाने की जो स्टेज है वो तुम बच्चों की बनती है। तुम बच्चे किसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठने वाले। सन्मुख भी दो प्रकार के, देखने में तो आते हैं मुख के सामने बैठे हैं। क्या देखने में आते हैं? मुख के सामने बैठे हैं, गिने जा सकते हैं कि इतने हैं, गिने जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन अंदर अंदर विपरीत संकल्प चल रहे हैं। क्या? कैसे संकल्प? विपरीत संकल्प चल रहे हैं, विरोधाभास के संकल्प चलते रहते हैं। मारकाट के संकल्प चलते रहते, खंडन करने के संकल्प चलते रहते। तो भले देखने में तो सन्मुख हैं, लेकिन क्या अंतरात्मा से सन्मुख हैं? है? बाहर से सन्मुख देखने में आते हैं या अंदर से सन्मुख हैं? है? अंदर से सन्मुख नहीं है, अंदर से विपरीत बुद्धि के संकल्प भी आते हैं। लेकिन बाप कहते हैं कि मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो जिस तन में पहले पहले प्रवेश करता हूं उसके काम के आधार पर इस यज्ञ का नाम देता हूं। क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसका नाम लिया? अविनाशी रुद्र का नाम लिया। इसका मतलब जो सच्ची रूपी रंगमंच पर महाविनाश के समय, महामृत्यु के समय, क्योंकि साधारण मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती ही रहती है, लेकिन महामृत्यु कब होती है? कब होती है? अरे होती है कि नहीं, कब होती है? हाँ, जब ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य षष्ठी का ड्रामा अंत होता है, तो सब एक्टर्स अपना शरीर रूपी चोला छोड़ छोड़ करके, अपने वस्त्र उतार करके अपने अपने घर क्या करते हैं, चले जाते। तो ये शरीर रूपी वस्त्र हैं, इन शरीर रूपी वस्त्रों को हम सब मनुष्य आत्माएं उतार करके बाप के घर चले जाते हैं। उसी को कहते हैं महामृत्यु। शरीर की मृत्यु होती है या आत्मा की होती है? शरीरों की मृत्यु होती है। शरीरों जल हो जाते हैं, शरीर अव्यक्त हो जाते हैं, इस सृष्टि पर दिखाई ही नहीं देते किसी को। एक ही शरीर रहता है जिसे सत्त कहा जाता है। क्या? एक शरीर, जिस शरीर को बड़ा रूप कहा है शिव बाप ने, कि मेरा छोटा रूप याद नहीं आता तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। बड़ा रूप माने शरीर रूप है या आत्मा रूप है? शरीर रूप। उसको याद करते रहेंगे तो वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, या नंबर वार में है, है? नंबर वार है, अब्बल नंबर नहीं है, अब्बल नंबर है। जिस शरीर रूपी रथ का क्षेत्र का ज्ञान उस एक ही क्षेत्रज्ञ को है। क्या? अंतिम जन्म में वो शरीर रूपी मुकर्रर रथ कैसे पत्थर बुद्धि बन गया? छोटा मोटा पत्थर नहीं, साधारण पत्थर नहीं, ग्रेनाइट पत्थर, और उसमें भी पहाड़ जैसा बड़ा पत्थर। जिसमें भगवान बाप आते हैं उसकी यादगार है माउंट आबू पहाड़। पूरा पहाड़ एक ही पत्थर का बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर का, जहां भगवान बाप आकर के पार्ट बजाते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि की यादगार है वो लिंग, जो कलयुग के अंत में पत्थर के रूप में पूजा जाता है। टोटल 100% पत्थर बुद्धि बनता है या नहीं बनता है? है? अच्छा, वो 100% पत्थर बुद्धि, और हम और आप जो है परसेंटेज में पत्थर बुद्धि है, ऐसे हम और आप कोई 1%, कोई 10, कोई 50, कोई 99% पत्थर बुद्धि, और वो जिस मुकर्रर रथ में वो शिव आता है वो 100% पत्थर बुद्धि, ऐसे है? अरे बताओ, है? अरे हाँ या ना? हाँ, वाह भाई, माने पत्थर बुद्धि माने बेसमझ, पत्थर बुद्धि माने बेसमझ, वो 100% पत्थर बुद्धि बेसमझ और हम समझू उसके मुकाबले है? हम बच्चे उस रथ के मुकाबले जिस रथ में भगवान बाप आते हैं, सुप्रीम सोल जो ज्ञान धन का अखूट भंडारी है, पत्थर बुद्धि में आता है तो साबित करना पड़े वो कौन सी बात है, कौन सा पॉइंट है जिसमें वो आत्मा 100% पत्थर बुद्धि साबित होती है,
है? है? है?
जोर से बोलो।
कामी
कांटे में आता है, और तो सब कामी कांटे होंगे ही नहीं हैं? हैं? और सब नंबर बार कामी कांटे, और वो 100% कामी कांटा हैं? ऐसे कांटा माने दुखदाई, कांटा माने दुखदाई माने औरों के मुकाबले वो ज्यादा दुखदाई है, हैं? वो शरीर रूपी रथ, जिस शरीर रूपी मुकर्रर रथ का सुप्रीम सोल गॉड फादर आधार लेते हैं, वो बड़े ते बड़ा कामी कांटा दुखदाई है, हैं?
दुखदाई पार्ट बजाते हैं पहले बजे?
दुखदाई पार्ट बजाते हैं पर नहीं बजाते?
पहले बजाते,
पहले बजाते थे, अभी की बात नहीं है, संगम युग की। संगम युग में कामी कांटा नहीं है, हैं? संगम युग में पतित्तम कामी कांटा नहीं है। अरे मुरली की बात का खंडन करना चाहिए क्या? बाप कहते हैं श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, मना मुरली में जो बात कही है उसके बरखिलाफ अगर कोई बात करता है तो कौन सा संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो पतित्तम कामी कांटा बड़े से बड़ा दुखदाई है या नहीं है? है। ऐसे अरे ऐसे ही अंधश्रद्धा पूर्वक बाप तो कहते हैं हम बच्चों के लिए बड़े फखर से, क्या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते? आपने कैसे मान लिया? कोई प्रूफ प्रमाण है? जोर से बोलो। शिव ने प्रवेश किया कामी कांटे में प्रवेश, ये तो मुरली में बोला ही है, ये बोला हुआ है, वो तो है ही बोला हुआ है, लेकिन वो प्रूफ चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखदाई है, दुनिया में इतना दुख देने वाली आत्मा कोई भी नहीं है। मुरली की बात का प्रूफ तो है ही है। बाप सुप्रीम सोल कहते हैं मुकर्रर रथ के द्वारा मुरली में कि राम ही रावण बनता है, यही प्रूफ हो गया। रावण माने रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो सब महाविनाश होगा, महामृत्यु का समय होगा, उस समय इस सृष्टि में 8 आत्माओं को छोड़ करके बाकी सभी मनुष्य आत्माएं हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगी या खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगी? इसकी क्या साबित हुआ है? इतना बड़े से बड़े हुजूम को दुख देने वाला पार्टधारी दुनिया में कोई और मनुष्य आत्मा है क्या? है? है? नहीं है? है? कोई मनुष्य आत्मा नहीं? महाकाली है या नहीं है? है? अरे महाकाली है या नहीं है? है? महाकाली सबको मौत के घाट उतार देगी या नहीं उतार देगी? है? अनिश्चय बुद्धि बनाएगी या नहीं बनाएगी? सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। अनिश्चय बुद्धि माने बाप का बच्चा मर गया, अरे वो तो इतनी भयंकर है कि जो 8 हैं धर्मराज की भी सजा नहीं खाते, उनको भी मार गिराएगी क्या? माया बेटी का साथ देने के कारण, माया बेटी के प्रभाव में आकर के जो 8 आत्माएं अष्टदेव कहे जाते हैं, जो भगवान की मूर्ति के सर पर रखे हुए ऊंचे से ऊंचे मड़के माने जाते हैं, आत्मा रूपी मड़के, उनको भी मौत के घाट उतार देती है, वो भी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? हैं? खुशी खुशी बाप को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, खुशी से छोड़ेंगे या दुख की स्टेज में छोड़ेंगे? हैं? दुख की स्टेज में जबरियन मजबूरी से छोड़ेंगे। तो महाकाली ज्यादा दुखदाई हुई या महाकाल ज्यादा दुखदाई हुआ? है? महाकाली, महाकाल कैसे? अरे दो में से तो एक तो होगा ही, महाकाली नहीं तो महाकाल बता दो। महाकाली, महाकाली माया के प्रभाव में आकर के एक्ट ऐसी करती है कर्म इंद्रियों से, क्या? वाचा से, कोई भी कर्म इंद्रियों से ऐसी एक्ट करती है। वाक देवी, वाचा की देवी, पंडित सोई जोई गाल बजाबा। आज की दुनिया में पंडित विद्वान कौन माने जाते हैं? जो बहुत बड़े बड़े भाषण कर लेते हों। दुनिया की जो सत्ताएं हैं, दुनिया में राज्य चल रहे हैं कि नहीं, उनमें जो बड़े बड़े नेताएं हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भाषणबाजी करने में बड़े होशियार होते हैं या नहीं होते हैं? तो उनको बड़ा विद्वान होशियार समझा जाता है या नहीं समझा जाता है? समझा जाता है। लेकिन क्या ये बात सत्य है कि जो गाल बजाना जानता हो वो ही होशियार है? ऐसा है क्या? नहीं, दुनिया में इंद्रियों की शक्ति बड़ी शक्ति नहीं है। इंद्रियां विनाशी शरीर का, विनाशी देह का अंग है। चाहे उन इंद्रियों का मुखिया मन ही क्यों न हो, लेकिन मन को भी कंट्रोल करने वाला जो राजा है वो सर्वोपरि इस दुनिया में। जो गीता में भी कहा, इंद्रियाण परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेन्द्रियां हो, इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से ज्यादा परे ज्यादा शक्तिशाली मन है। 11वीं इंद्रिय मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल मनुष्यों के अंदर बुद्धि है। मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, समझ शक्ति। मन है संकल्प शक्ति। तो मनुष्य आत्माओं के बीच जो सबसे जास्ती बुद्धिमान साबित होता है वो कौन है? जिसे संसार में त्रिनेत्री कहा जाता है, कोई है या नहीं है? कौन? शंकर को कहा जाता है त्रिनेत्री। दो नेत्र तो सामान्य सभी मनुष्यों को होते, लेकिन वो तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र प्रबल रूप में धारण कर लेता है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल बाप है, उससे तो इस सृष्टि में वो त्रिनेत्री सबसे प्रबल है। इंद्रियों से प्रबल मन और मन से प्रबल त्रिनेत्री बुद्धि, और उससे भी जास्ती प्रबल वो यो बुद्धि परसस्तु सच, जो बुद्धि से भी परे है वो है वो। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो कौन कहा जाता है? कौन सी आत्मा है बुद्धिमानों की बुद्धि है? हाँ, आत्मा, आत्मा का नाम बताओ। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन सी आत्मा है? है शिव। उससे ज्यादा बुद्धिमान आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली कोई है ही। बहुत समझू है, उससे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। त्रिकालदर्शी है और सदा काल का त्रिकालदर्शी है, या कभी है कभी नहीं, सदा काल का त्रिकालदर्शी। तो जो सदा काल का त्रिकालदर्शी है वो ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। आज की दुनिया में बड़े से बड़े बुद्धिमान कौन माने जाते हैं? डॉक्टर माने जाते हैं, इंजीनियर माने जाते हैं, धोबी माने जाते हैं, नाई माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं?
हैं?
साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिकों ने इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि उंगली का इशारा करके बटन दबाएंगे और सारी दुनिया को ध्वस्त कर सकते हैं। उनमें ध्वस्त करने की शक्ति है या निर्माण करने की भी शक्ति है? हैं? दोनों है। नई दुनिया स्वर्ग बनाएंगे तो दोनों कहां से हुई?
नई
नई वस्तुएं ईजाद करते हैं, आत्मा से ज्यादा कोई नई चीज है? फिर स्वर्ग से ज्यादा कोई नई सात्विक चीज है? वो तो ईजाद नहीं कर सकते। उनका जो बाप वो वैज्ञानिक नास्तिक हैं या आस्तिक? न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न परम पिता को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरकों को मानते, तो नास्तिक हुए ना। वो नास्तिक जिनके अंदर कोई किसी के प्रति भी आस्था नहीं, विश्वास ही नहीं है, ऐसी आत्माएं मनुष्य आत्माएं कौन से देश में है सबसे जागती है? कोई देश है जहां सबसे जागती बुद्धिमान आत्माएं हैं जिन्होंने ऐसी शक्ति को ईजाद कर दिया जिससे बटन दबाते ही सारी दुनिया ध्वस्त? रशिया, एटमिक एनर्जी रशिया ने बनाई, नास्तिकों ने बनाई। जो बॉम्ब बनाए हैं नास्तिकों ने बनाए या आस्तिकों ने बनाए? नास्तिकों ने बनाए। अब आ जाओ ब्राह्मणों की वेद की दुनिया में, आ गए। बड़े से बड़ा परमात्मा बॉम्ब क्या है? है बड़े से बड़ा बॉम्ब है परमात्मा बॉम्ब। उस बड़े से बड़े बॉम्ब का रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा है? अरे छोटी मोटी बॉम्बियां जापान में हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर गई, पूरे शहर का शहर दोनों मटिया मेट हो गए। वो तो 20-20 मेगावाट के बॉम्ब थी, बॉम्बियां थी। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब तैयार हुए पड़े, और उन बॉम्ब के बीच में एक बड़े से बड़ा बॉम्ब शिव बाप ने ब्रह्म वाक्य में जिसे हम मुरली कहते हैं बता दिया। क्या बड़े से बड़ा बॉम्ब का नाम क्या दिया? परमात्मा बॉम्ब। वो परमात्मा बॉम्ब जो बाप की प्रत्यक्षता का बॉम्ब बताया, क्या बॉम्ब क्या करता है? है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को बड़े से बड़ा बॉम्ब खलास कर देगा। लेकिन खलास करने से पहले उस एक ऊंचे से ऊंचे बाप की पहचान देगा या नहीं देगा? है, पहचान देगा। कौन से ऊंचे से ऊंचे बाप की पहचान देगा? शिव बाप की पहचान देगा। वो त्रिकालदर्शी है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी का ज्ञाता है, या थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है, है? प्रैक्टिकल करके दिखाता है वो, हाँ, उसी की तो बात है जो बापों का बाप है, उसको परमात्मा कहेंगे, है? परम पिता कहेंगे, पिताओं के बीच में परम पिता है, लेकिन आत्माओं के साथ तुलना करेंगे तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में वो परम पाठधारी परमात्मा नहीं है। जिस परमात्मा के बारे में गीता में बताया हुआ है, तीन प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर पतित होने वाली, क्षीण होने वाली, शक्ति क्षीण होती रहती है पार्ट बजाते बजाते, और एक ऐसी भी आत्मा है कि जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, अक्षर है। एक है अक्षर, दूसरी वो आत्माएं हैं जो क्षरित हैं, क्षर, लेकिन तीसरी एक और आत्मा है जो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच परमात्मा का पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्टधारी है। गीता में शब्द में बोला है परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा जाता है। जब हम कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो परमात्मा शब्द बाद में क्यों बोलते हैं? परमपिता पहले क्यों? बड़े का नाम पहले। शिव शंकर बोलते हैं तो शिव का नाम पहले क्यों, शंकर का नाम बाद में क्यों? क्योंकि शिव जिन तीन देवताओं की रचना करता है वो बड़े से बड़े देवताओं में बड़े से बड़ा देव महादेव शंकर कहा जाता है। विष्णु महादेव नहीं कहा जाता, ब्रह्मा महादेव नहीं कहा जाता। जो कहते हैं ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उन दोनों देवों से ऊंचा देव 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 महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम, शक्तिशाली का नाम पहले और कम शक्तिशाली का नाम बाद। तो परमपिता शब्द पहले, परमात्मा शब्द बाद। ऐसे कोई नहीं कहता परमात्मा परमपिता। तो जो परमात्मा पार्टधारी है उसी को शास्त्रों में परम पदधारी कहा। शिव तो कोई पद लेता ही नहीं, लेता है, है? शिव परम पद लेता है, विश्वनाथ बनता है, विश्वपति बनता है, विश्व का मालिक बनता है कि बनाता है? बनता नहीं है, वो कोई पद नहीं लेता। इसलिए जो पदधारी हैं उनमें बड़े से बड़ा पद लेने वाला विष्णु कहा गया है, परम पद, परे ते परे का पद है। इस मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे से ऊंचा पद है वो विष्णु पद है। और विष्णु किसका नाम है? लक्ष्मी नारायण के कॉम्बिनेशन का नाम विष्णु है। दो आत्मा, लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी पुरुषार्थ करके बनती है और नर से नारायण पुरुषार्थ करके बनता है। वो पुरुषार्थ का रास्ता बताने वाला वो सर्वोपरि, जिसमें अकूट ज्ञान का भंडार कभी खत्म ही नहीं होता, सदा त्रिकालदर्शी। इसलिए वो ही एक ज्ञानी है, उसके मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई मनुष्य आत्मा इतनी ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञान का भंडारी सदा काल का कोई है या नहीं? है ही नहीं। इसलिए बोला गीता में, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र शक्तिशाली चीज दुनिया में कोई होती ही नहीं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे जास्ती पवित्र क्या है? ज्ञान। वो ही बात तो बताने जा रहे। तो जो ज्ञानी है उसका काम दुख देना है या सुख देना है? है? सुख देना। और जो अज्ञानी भी बनता है, एकदम 100% पत्थर बुद्धि बनता है और फिर पारस बुद्धि भी बनता है। अब्बल नंबर। तो दोनों आत्माओं के बीच में जो एक सदा ज्ञानी है और दूसरी सदा ज्ञानी नहीं है, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? है जो सदा ज्ञानी है वो ही ज्यादा श्रेष्ठ हुआ ना। लेकिन वो सिर्फ संगम युग में है सदा श्रेष्ठ, चारों युगों में पार्ट बजाता है, है? नहीं बजाता। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा श्रेष्ठ कौन है? सदा हीरो पार्टधारी कौन है? परम पार्टधारी आत्मा कौन है? इस रंगमंच पर चारों सीन में जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है, प्रैक्टिकल पार्टधारी है, सिर्फ थ्योरी सुनाने वाला सुनने वाला नहीं, दुनिया में थ्योरी में कोई पास हो जाता है सभी सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है, तो उसे फेल मानते हैं या पास मानते हैं? है? फेल मानते हैं। तो यहां इस दुनिया में जो भी चारों युगों में पार्ट बजाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जो आत्मा बड़े से बड़ा ज्ञानी भी है और बड़े से बड़ा अज्ञानी भी है, क्या? जब बड़े से बड़ा ज्ञानी है तो प्रैक्टिकल में सिर्फ कहने मात्र नहीं, सुनने सुनाने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है, बिना शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर संपूर्ण ज्ञानी है तो क्या करता है? सुख देता है, स्वर्ग बनाता है, संपूर्ण राजधानी तैयार करता है। और कौन से युग में? संगम युग में, जो हम गीत भी गाते आए, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, गीत गाए ना बेसिक में, तो वो बात साबित होती है कि वो नई दुनिया ऐसी रचने का प्रैक्टिकल पार्टधारी है, ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनाता है जिसमें कोई भी दुनिया का भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी प्योरिटी के आधार पर यूनिटी बनाता है। वो प्योरिटी सबसे शक्तिशाली मन और बुद्धि के द्वारा वो प्योरिटी होती है या कर्मेंद्रियों के द्वारा प्योरिटी होती है? मन बुद्धि के द्वारा वो प्योरिटी का वाइब्रेशन बनता है। जिस वाइब्रेशन की शक्ति से सतयुग का पहला प्रिंस और प्रिंसेस जन्म लेती है, दुनिया के पहले पत्ते जिनसे ऊंच पद इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। सतयुग के जो राधा कृष्ण हैं, उनके मुकाबले ऊंचा पद 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई प्राप्त कर सकता है? है? नहीं कर सकता। लेकिन उनका भी कोई माँ बाप है, उनसे भी ऊंचा पार्टधारी, वो आत्मा है जो इसी एक जन्म में संगम में ही नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी पद पाता है। वही परमात्मा पार्टधारी है। उसमें ये भी शक्ति है जो मुरली में बोला है ब्रह्म वाक्य में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्या बोला? माना वो स्वर्ग की दुनिया का भी अधिष्ठाता है, सुखदाई दुनिया, और नरक की दुनिया का भी अधिष्ठाता है। स्वर्ग की दुनिया का अधिष्ठाता तब बनता है जब बाप समान स्व की स्थिति में, स्व माने आत्मा, स्व आत्मा की स्थिति में सदा काल के लिए स्थित हो जाता है, तब स्वर्ग रचता है। और जब कलयुग के अंत में एकदम 100% पत्थर बुद्धि बन जाता है, कितना भी ज्ञान का भंडारी, अकूट भंडारी, ज्ञान देता रहे, समझाता रहे, लेकिन उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। किसकी बुद्धि में? उस 100% पत्थर बुद्धि की बुद्धि में, जिसकी यादगार ग्रेनाइट पत्थर का लिंग बनाया जाता है, बनाते हैं ना मंदिरों में, तो इतना पत्थर बुद्धि बनता है कि सारी दुनिया का विनाशकारी कहा जाता है, सब धर्मों का विनाश। क्या? सब धर्म पिताओं का भी विनाश, सब धर्म खंडों का भी विनाश, और एक की स्थापना करने वाला, उस एक का नाम है भारत धर्मखंड। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, सबसे ऊंचा माना जाता है। जिसके लिए बोला अखूट ज्ञान के भंडारी शिव ने कि मैं जब आता हूं तो जब तुम बच्चे एड़ी से लेकर और चोटी शुरू होने से पहले तक पूरे ही विकारों की दलदल में डूब मरते हो, तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या क्या पकड़ करके? चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो वो चोटी का नाम दिया चोटी का ब्राह्मण। क्या नाम दिया? चोटी का ब्राह्मण। उसकी यादगार बनी हुई है सारी दुनिया के बीच सबसे ऊंची स्टेज वाली चोटी। कौन से? एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट का मतलब जिससे पूर्वीय सभ्यता का ज्यादा पोषण करने वाला इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। बताओ, ठेक ईस्ट से कौन निकलता है? एकदम पूर्व से कौन निकलता है? सूर्य। सूर्य से जास्ती पूर्वी सभ्यता वाला ज्ञान की रोशनी फेंकने वाला और कोई दुनिया में होता ही नहीं। तो जब सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी महाविनाश काल के टाइम पर, कैसे? एटम बम फटेंगे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो दुनिया के बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो दरक करके समंदर में आएंगे या नहीं आएंगे? हैं? समंदर में आ जाएंगे। तो समंदर का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और एटम बमों के विस्फोट से पृथ्वी डोलायमान होगी या नहीं होगी? जिसे धरणी माता कहा जाता है, वेद की भाषा में हम ब्राह्मणों की दुनिया में वो बीज रूप माताएं हैं कि जब वो ग्लानी का परमात्मा बम फटेगा तो माताएं सारी बिचारी बंधन में आ जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा है? धरणी हिलेगी और इतनी जोर से हिलेगी कि धरणी के अंदर जो आग का भंडार भरा हुआ है विरोधाभास का, किस बात का विरोधाभास? द्वैतवादी द्वापर युग से जो विधर्मी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ने और साथ साथ भारत में जो विधर्मी हुआ चंद्रवंश, और चंद्रवंश का प्रणेता, उन सभी ने मिलकर के माताओं को जितना दुख दिया है द्वापर द्वैतवादी द्वापर युग से, वो दुख का क्या क्या फूटता है, भूकंप धरती कंप, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुनिया में ज्वालामुखी फटेंगे, जो सारी दुनिया में जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी के मकान हैं या एक मंजिल के भी मकान हैं, वो सब धराशायी हो जाएंगे। और दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी कहाँ रहती है, है भारत में मकानों में, एक मंजिल के हो चाहे बहुमंजिल हो, मकानों में ही रहती है ना, वो सब दब के मर जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जब पृथ्वी माता हिलेगी, जो बड़े से बड़ा उपयोगी ग्रह है मनुष्य शक्ति में, तो दूसरे जो ग्रह हैं वो भी अपना अपना स्थान छोड़ने लग पड़ेंगे, खास करके जो पृथ्वी का उपग्रह है, क्या पृथ्वी से अलग होकर उपग्रह बना कौन सा, चंद्रमा, वो चंद्रमा भी पृथ्वी पर आ मिलेगा। पृथ्वी किस गोद में समा जाएगा, प्रशांत महासागर में समाएगा, और सूरज जो ओजोन किरण फट रही है, वो फटती ही जा रही है, या फटना बंद हो रही है, उसके कारण दुनिया में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। जो कुरान में भी लिखा है, जब विनाश होगा महाविनाश, तो आफताब आग बरसाएगा, तो एटम बमों की आग, सूरज की आग, और पृथ्वी के अंदर से जो गरम गरम लावा निकलेगा, जैसे लोहा पिघलता है ऐसा पिघला हुआ लावा निकलेगा, जो ज्वालामुखी फटने पर लावा निकलता है आग का, वो ढेर का ढेर लावा निकलेगा। पृथ्वी पर भी, पहाड़ों पर भी, समंदर में भी, इतनी गर्मी से सागर का जल बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा, कि बॉइल्ड वाटर बनने से इतनी जोर से मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी, एक तो सागर बर्फ के पहाड़ गिरे, जल स्तर ऊंचा हुआ, चंद्रमा प्रशांत महासागर में गिरा तो और जल स्तर ऊंचा हुआ, और दुनिया के जो बड़े बड़े धर्मखंड हैं विनाशी, जो 2500 साल पहले थे ही नहीं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अरब देश हो, ये सारे समंदर के गर्त में समाएंगे, तो जल स्तर और ऊंचा उठेगा या नहीं उठेगा, सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी, इतनी भयंकर बाढ़ आएगी। और जब जल की बाढ़ आती है तो उस जल में देह अभिमानी की मिट्टी मिली हुई होती है या नहीं मिली हुई होती है? है? ऐसी देह अभिमानी की मिट्टी अभी बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बाढ़ आने वाली है परमात्मा बांब ग्लानी का फटने से। उस भयंकर बाढ़ में सारे ही देह अभिमानी जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो सके सब डूब मरेंगे। इसलिए बोला जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो। विकारों की दलदल में कब डूबते हैं? देह अभिमान बढ़ता है तब या घटता है तब? देह अभिमान बढ़ता है तो देह अभिमान की मिट्टी जो है वो ज्ञान जल में मिक्स हो जाती है। उस बाढ़ में सभी प्राणी अंधे हो जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कामांध। और काम का अंश होगा तो क्रोध जरूर होगा, जिसे बाबा कहते हैं कामांध क्रोधांध कामेश क्रोधेश। क्या काम विकार उत्पन्न होता है और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए जो लास्ट संदेश है अव्यक्त बाप दादा का गुलजार दादी के द्वारा 23 जुलाई का, उसमें कहा है कि युवा वर्ग निमित्त बनेगा परमात्मा बांब फोड़ने के लिए, परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए। युवा वर्ग में अदर कुमारों की संख्या ज्यादा है, कुमारियों की संख्या ज्यादा है, अदर कुमारी अदर कुमारों की संख्या ज्यादा है या कुमारों की संख्या ज्यादा है? है? युवाओं युवा वर्ग में जो परमात्मा बांब परमात्मा प्रत्यक्षता का बांब फोड़ेंगे ज्यादा संख्या किसकी है? अरे युवा वर्ग में कुमारों की संख्या ज्यादा है, कुमारियों की संख्या ज्यादा है, जो अदर कुमार हैं अदर कुमारियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ज्यादा संख्या किसकी है? है कुमारी की संख्या ज्यादा है, वो बांब फोड़ेंगी ग्लानी का। कुमारियां ग्लानी का बांब फोड़ेंगी। अरे इसी अव्यक्त वाणी में जो जन्म से ही कुमारी रही बेसिक ज्ञान में भी अभी तक भी उस कुमारी के तन में ब्रह्मा ने प्रवेश किया, शिव का प्रवेश उसमें नहीं हो सकता क्योंकि कुमारी पर शिव नहीं आ सकते, पतित तन में आते हैं। तो पवित्र तन में ब्रह्मा की सोल ने प्रवेश किया, वो गुलजार दादी जैसी कुमारी परमात्मा बांब ग्लानी का फोड़ेगी। अरे फोड़ेगी नहीं, इसलिए बोला इस कुमारी के तन के द्वारा मैं वाणी नहीं चला सकता। जो वाणी भारतीय शास्त्रों में प्रसिद्ध है नंगा नाच, कौन से व्यक्ति का नंगा नाच प्रसिद्ध है? है कोई भी व्यक्ति है भारतीय शास्त्रों में? है शंकर है। उस रथ के बारे में बोला कि वो रथ की आवाज जानी चाहिए दुनिया में। हम बच्चों से बोला उस रथ की आवाज जानी चाहिए, वो रथ दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। जिसकी ज्ञानी का बांब फूटेगा, ज्ञानी श्याम कहे जाने वाले कृष्ण की होती है या सुंदर कृष्ण की ग्लानी होती है? काले मुंह वाले कृष्ण की ग्लानी होती है या सुंदर मुख वाले कृष्ण की ग्लानी होती है? दो नाम है एक ही शख्स के, श्याम सुंदर। पहले श्याम फिर सुंदर, इसी एक जन्म में श्याम भी होता है पहले और बाद में सुंदर भी बनता है। ऐसे नहीं जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा इस जन्म में श्याम थे, सतयुग में जाकर सुंदर बनेंगे। तो दो व्यक्ति हो गए ना, दो व्यक्तियों का नाम है श्याम सुंदर कि एक का नाम है? तो एक शख्सियत है जो वर्तमान में अभी श्याम पार्ट बजा रही है, काला पार्ट बजा रही है, काले मुंह वाला जगन्नाथ का पार्ट बजाई रही है कि गोरे कृष्ण का पार्ट बजाई रही है? जिस गोरे कृष्ण के लिए हम बच्चों को लक्ष्य दिया है कि तुम बच्चों का इस जीवन में कहां जाने का लक्ष्य है, श्री कृष्णपुरी में जाने का लक्ष्य है या कंसपुरी में जाने का लक्ष्य है? है श्री कृष्णपुरी में जाने का लक्ष्य है। तो वो श्री कृष्णपुरी जो शास्त्रों में गाई हुई है श्री कृष्ण, वो संगम युग का श्री कृष्ण है या सतयुग का श्री कृष्ण है? संगम युग का श्री कृष्ण है। जिसके चित्र आजकल कई वर्षों से देखने में आ रहे हैं कि दुनिया का एक बड़े से बड़ा बुजुर्ग अनुभवी सफेद दाढ़ी मूछ वाला श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के दुलार दे रहा है। चित्र देखा नहीं देखा है? देखा या नहीं देखा? वो चित्र चरित्र की यादगार है। वो अनुभवी आत्मा कौन है संसार की सबसे बुजुर्ग आत्मा, सबसे अनुभवी, अनुभवी को वयोवृद्ध कहा जाता है। सफेद बालों वालों को नहीं, तो कौन सी आत्मा है इस संसार में? पार्ट बजाने वाली भी है राम वाली आत्मा। राम का कोई बाप नहीं है, बुजुर्ग है, ये तो वो ही बात हो गई जो मुरली में ब्रह्म वाक्य बोला है। कोई मम्मा देहदारी के मुरीद, कोई बाबा देहदारी के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। दुनिया की सबसे जास्ती अनुभवी बुजुर्ग आत्मा किसे कहेंगे जो दुनिया में पार्ट भी बजाती है? शिव बाप। उस शिव बाप को अनुभवी रूप में कैसे दिखाएं? बिंदी रूप में दिखाएंगे तो बिंदी रूप में कृष्ण बच्चे को गोद में कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे इसलिए चित्रकार ने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठाया। दाढ़ी मूंछ वाला, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूंछ, सफेद, और गोद में कृष्ण बच्चा दिखाया। इससे साबित होता है कि रामायण में राम को जो भगवान बताई दिया है, कहते हैं त्रेता युग का राजा राम, उस आत्मा की बात है। यशो बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि वो त्रेता वाला राम नहीं, इस संगम युग में रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, अतीन्द्रिय सुख खेलते हैं, अतीन्द्रिय सुख का पार्ट बजाते हैं, जिसकी यादगार रास लीला दिखाई जाती है, हरेक गोप गोपियों के साथ भगवान ज्ञान डांस करता हुआ दिखाया गया, ऐसा अतीन्द्रिय सुख देने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो अनुभवी से अनुभवी संसार की आत्मा है जो संसार में भी पार्ट बजाती है। मुझ शिव को दिखाया है वृद्ध रूप में, नहीं तो निराकार ज्योति बिंदु को वयोवृद्ध के रूप में, अनुभवी के रूप में कैसे दिखाएगा चित्रकार। तो चित्र चरित्र की यादगार है, दुनिया की पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती अनुभवी आत्मा कौन, शिव। तो जो पहले बेसिक ज्ञान में तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां सेंटर के दरवाजे पर बड़ा बोर्ड लगाती थी जिसमें लिखा जाता था श्री कृष्ण आ रहे हैं, तेरे पर स्वर्ग, बहिष्त हथेली पर स्वर्ग का गोला दिखाया था और लात नरक के गोले को मार रहा है, माने ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया को लात मार रहा है जो तामसी बन जाती है, आधार मूर्त बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया संक्षेप्तर से पहले, और तीरी पे बहस्त माना बुद्ध रूपी अकेली में नई दुनिया की प्लानिंग लेकर आया है, नक्शा लेकर आया है। कॉन्सेशन की बात है, है? अरे 10 साल पहले ही मुरली में घोषणा कर दी, 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, और लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो 76 आते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म राधा कृष्ण के रूप में, पहले बच्चे के रूप में होगा, या पैदा होते ही होशियार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा है? है? पहले बच्चे के रूप में होगा ना। उस बच्चे को उंगली पकड़ करके माँ बाप चलाते हैं या पहले से अपने आप चलने लग पड़ता है? तो गोद में दिखाते हैं श्री कृष्ण को, इसका मतलब है हमें उसी बाप की गोद में जाना है। जिस बाप की गोद में वो कृष्ण पल रहा है, सुख से पल रहा है या दुख दर्द से पल रहा है? है सुख में पल रहा है। जो विद्वान पंडित आचार्य हैं या जिन कवियों ने उसकी जीवन कहानी लिखी है, जो आत्मा सुप्रीम सोल बाप की ज्ञान की गोद में पल रहा है, अज्ञान की गोद में या ज्ञान की गोद में है? ज्ञान प्रकाश की गोद में पल रहा है। वो बच्चा दुखी हो सकता है क्या? है? वो बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसके लिए रामायण में ही बोल दिया, द्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपनहु संकट परहि किसोई। जिसकी द्रकुटि के विलास मात्र से सारी दुनिया नष्ट हो सकती है, उसके ऊपर सपने में भी कोई संकट दुख नहीं आ सकता। उसकी यादगार भारत के ठेठ पूरब में एक देश है, नई दुनिया की पालना करने वाले ब्राह्मणों के संगठन के बीच, जो बेहद का नेपाल है, उस बेहद के नेपाल के भी पूरब में एक देश है, द्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। इस बात को नाम के आधार पर साबित करता है। भूटान, भ्रू माने भौ, भ्रू टान माने ब्रकुटी के तानने मात्र से सारे संसार का विनाश हो सकता है। वो देश बताया तो वो आत्मा जिसकी यादगार में भूटान देश बना है इस दुनिया में, जहां राजतंत्र अभी भी चल रहा है, भले देखने मात्र के हिसाब से आता है कि वहां प्रजातंत्र है, लेकिन सारी प्रजा किसको मानती है? वहां के राजा को ही मानती है, वहां के मंत्रियों मंत्रियों को नहीं मानती। ऐसा सुदृढ़ राजतंत्र है वहां का, जिसको बाबा ने नाम दिया है रूहानी मिलिट्री। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। ऐसा डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में दुनिया के सभी देश सबसे जास्ती खर्चा करते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है? है मिलिट्री, रूहानी कहां धरी है इस दुनिया में? बाहर की दुनिया की बात की, बाहर की दुनिया के सभी देशों में कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके पीछे सबसे जास्ती खर्चा होता है? है मिलिट्री। वो है हद की मिलिट्री, देह अभिमान की मिलिट्री, और यहाँ है है आत्मा रूपी रूह की मिलिट्री जो यहाँ तैयार हो रही है। क्या वो रूह जो दुनिया का बड़े से बड़ा राजा बनता है, विश्व पिता, विश्वनाथ कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व का पिता कहा जाता है, वो सारे विश्व के ऊपर राजाई कैसे प्राप्त करता है? कौन सी पढ़ाई पढ़ता है अव्वल नंबर में? गीता में कौन सी पढ़ाई पढ़ाई गई? भगवान ने गीता ज्ञान दिया, ज्ञान के गीत के रूप में, उसमें कौन सी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई। उस राजयोग में ऐसा राज भरा हुआ है जिसे गीता में कहा है, क्या राज विद्या राजगुह्यम, ये राजाओं की विद्या है, गुह्यते गुह्य राज है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। क्या ऐसा ज्ञान जैसे सागर की गहराई गुह्यता आज तक दुनिया में कोई ने नहीं ले पाई। कोई को पता है सागर कितना गहरा है? जान पाया? लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं जान पाया। ऐसा गुह्य ज्ञान, और ऐसा गुह्य ज्ञान को धारण करने वाला जो गुह्य राज जानता है राजयोग का, वो राजयोग दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी विद्या है। थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? वो राज विद्या का ज्ञान देने वाला, ज्ञान का अखूट भंडारी शिव ही है, एकमात्र आत्मा। लेकिन वो गुह्य ज्ञान देता है, प्रैक्टिकल में योगी नहीं है। अगर कहें योगी है तो सवाल पैदा होगा किससे योग लगाता है? कोई है जिससे वो योग लगाए? कोई नहीं है उससे परे, तो योग लगाने की बात ही नहीं। तो कौन है योगी? जो बड़े से बड़ा योगी तो बड़े से बड़ा राजा। नंबर वार योगी तो नंबर वार राजा, जिसकी यादगार देश आज भी खड़ा है भूटान, ब्रूटान, जहाँ दुनिया की सबसे लंबे समय तक बादशाही चलती है, दुनिया के हर देश में बादशाह खत्म हो गए, राजाएं खत्म हो गए, बादशाही खत्म हो गई, लेकिन भूटान में आज भी बादशाही ही चल रही है। वो यादगार है उस दुनिया के बड़े से बड़े राजा की, जिसके ऊपर उसके ऊपर तो क्या, नेपाल के ऊपर किसी विदेश ने राजाई नहीं कर पाई, आक्रमण नहीं कर पाया किसी विदेशी ने। ऐसे ही उस देश के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया, और कोई आक्रमण करे भी तो ऐसी शक्तिशाली वो आत्मा है जिसकी यादगार भूटान देश है कि कोई इससे जीत ही नहीं सकता। उसकी यादगार भारत में चली आ रही है, शास्त्रों में भी है कि भारत में एक ही देवता है जिसकी युद्धों में कभी भी हार नहीं हुई। कौन सा देवता है? नारायण। जीत ही जीत होती है, निश्चय बुद्धि विजय थी। इसका मतलब जब से बाप को पहचाना होगा तब से लेकर महामृत्यु के समय तक भी वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकती। भले संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा साबित हो जाए, संसार उसे भगवान के रूप में मानने लगे, बोलने लगे, फिर भी वो अपने अंदर यही मान्यता रखेगा कि बाप बाप ही होता है और बाप समान तो हो सकता है लेकिन बाप बाप नहीं हो सकता। मुसलमान लोग भी ये बात मानते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा है, माने समान तो है, बाप समान, बाप का बच्चा बड़ा है तो, लेकिन बाप नहीं है, बाप बाप ही होता है और बच्चे बच्चे ही होते। तो ये बात साबित होती है कि वही मनुष्य सृष्टि का बाप है जो इस मनुष्य सृष्टि में चारों सीन रूपी चारों युगों में सदा सत्य पार्ट बजाता है। असत्य ठेठ अंत में जाके साबित हो जाता है। कब कब साबित होता? जब महाशिवरात्रि गाई जाती है। कैसी रात्रि? महाशिवरात्रि, दुनिया की बड़े से बड़ी अज्ञान की रात्रि, जिस अज्ञान की रात्रि में 500-700 करोड़ तो डूबे हुए होते ही हैं अंधकार में, अज्ञान में, लेकिन जो दम भरते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा की औलाद, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, वो भी भगवान बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि थे और अभी भी अनिश्चय बुद्धि है। और जो दम भरते हैं कि हमने प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान बाप को जाना, हमें प्रैक्टिकल भगवान बाप पढ़ा रहा है, सिर्फ माता के रूप में नहीं, ब्रह्मा के रूप में नहीं, सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। जो पाठधारी बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और एक ही पाठधारी है, एक ही शख्स है, एक ही व्यक्तित्व, ऐसा दम भरने वाले जो सारे संसार के सामने ढोल पीट रहे हैं कि हमें भगवान बाप प्रैक्टिकल में मिल गया, वो भी नहीं जानते कि बाप का असली स्वरूप क्या है। जो मुरली में शिव बाप ने ब्रह्म वाक्य में बोला कि बच्चे अपने ही टिक टिक करते रहते हैं, चित्र बना के रख देंगे 32 किरणों वाला निराकार शिवलिंग, का परिचय नहीं देते कि वो बाप कौन है इस सच रूपी रंगमंच पर, उसका नाम रूप धाम गुण कर्तव्य साफ लिखना चाहिए निश्चय पत्र में, कोर्ट में जाके एग्रीमेंट लिख देना चाहिए कि हमने बाप को पहचान लिया, जो इस मनुष्य शक्ति में प्रैक्टिकल शरीर से पार्ट बजाय रहा है। बेसिक ब्राह्मणों की बात छोड़ दें, एडवांस ब्राह्मणों वाल का एडवांस ज्ञान लेने वालों में भी अभी तक ढेर के ढेर ऐसे निकले जो दम भरते थे कि हमें भगवान बाप मिल गया, यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे, और इस जन्म में सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, शपथ पत्र लिख करके देते हैं एफिडेविट कि हमें इस नाम रूप से भगवान बाप मिल गया, आज पहचानते हैं और कल विरोधी बन जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं बाप के बच्चे बनकर, और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत सो जाते हैं। और अभी तो ये जो परमात्मा बाम्ब ग्लानी का बाम्ब खास युवाओं के द्वारा, जिनमें कुमारों की संख्या ज्यादा होगी, कुमारों के अंदर कौन सी आग सबसे जास्ती भड़कती रहती है, है? जो सभी विद्वानों ने माना है कि युगलों की 9999 चिंताएं एक पलड़े पर रखी जाएं और कुमारों की एक चिंता नौजवानों की एक पलड़े पर रखी जाए, तो वो एक चिंता जो है वो पलड़ा भारी हो जाएगा, और युगलों की 9999 चिंताओं वाला पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। वो कौन सी चिंता है, है? अरे कुमारों में कोई चिंता ऐसी है जो आग के रूप में काम करती है, नहीं।
अरे एक भी नहीं बोलता,
कहते हम भी तो कुमार थे,
हम क्यों बोले
है? अरे बड़ी धीरे से बोलते है? जोर से बोलो ना। काम विकार की आग, काम आग्नि जिसे कहते हैं,
और
ये आग ऐसी है जिसके बारे में शिव बाप ने ब्रह्म वाक्य बोल दिया। पहला वाक्य तो ये बोला कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, उनमें कुमारों की गिनती है या नहीं है? है ना? है। और उन कुमारों में बड़े से बड़ा वरदान भी मिला हुआ है, ईश्वरीय वरदान। क्या? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, नई दुनिया बनाना चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं, और सारी पुरानी दुनिया का विनाश करना चाहे तो विनाश भी कर सकते हैं। इतनी ताकत है कुमारों में। लेकिन जो काम विकार की आग लगी रहती है उसका रिजल्ट शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बताया। क्या? कामेशु क्रोधेशु, काम की आग जिनमें लगी होती है, कामना पूरी न होने पर वो क्रोध में आ जाती है। तो खास करके इस एडवांस ज्ञान में जो रुद्रमाला तैयार होती है, रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्र वत्सों की, उनमें जो कुमारों के रूप में पार्ट बजाए रहे हैं, उनमें ज्यादा जनसंख्या ऐसों की है जो काम विकार की आग शांत नहीं कर पाते, क्योंकि जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है उस धंधे में बुद्धि कम लगाते हैं और माया की बातों में बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। अगर ज्ञान जल में बुद्धि डूबी रहे तो आग शांत होगी या नहीं होगी? लेकिन ढकोसला ज्यादा करते हैं, दिखाएंगे ऐसे माँ बाप को, लौकिक घर वालों को भी ऐसे दिखाएंगे हम ईश्वर के बड़े शिकीलधे बच्चे हैं, घर में भी कोई काम नहीं करेंगे, माँ बाप तंग आकर जाओ जहां चाहे चले जाओ, और यज्ञ में आकर के भी जैसे चलना चाहिए, रूहानी मिलिट्री बनना चाहिए, वो बन के रहेंगे ही नहीं, अपनी मनमत जरूर चलाएंगे, और कन्याओं को भी खरी खोटी सुनाते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। जिन कन्याओं के लिए दुनिया भी जानती है कि कन्याएं आज की दुनिया में जितना अच्छा कार्य करके दिखा रही हैं, उतना अच्छा कार्य कुमार नहीं कर सकते, न कर रहे हैं, अदर कुमार भी नहीं, अदर कुमारियां भी नहीं, क्योंकि कुमारियों में पवित्रता की पावर जाती होती है। समर्पण भी ईश्वरीय कार्य में कुमारियां जास्ती होती है या कुमार अधर कुमार अधर कुमारियां जास्ती होती है? क्यों? क्योंकि पवित्र बुद्धि के आधार पर कुमारियां बाप को, एवर प्योर बाप को जल्दी पहचान लेती है, दूसरे लोग उतनी जल्दी पहचान नहीं पाते। तो जो आग लगी रहती है कुमारों में, वो आग की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान में तन अर्पण करके, धन अर्पण करके, मन अर्पण करके, मन के संकल्पों को अर्पण करके, संबंधियों की सारी ताकत लगाकर, दुनिया में जितने संपर्की आए हैं उनकी भी ताकत लगाकर ईश्वरीय सेवा में जीवन लगा देना चाहिए, वो नहीं लगा पाते, स्वार्थ युक्त जिंदगी बिताने में लग जाते हैं। तो क्या होता है, बाप को पहचानते हैं या न पहचानने के कारण ऐसा होता है? है न पहचानने के कारण ऐसा होता। बाप जो शिवालय बनाने आया है, उस शिवालय को वैश्यालय बनाना चाहते हैं, विचार का वातावरण बनाना चाहते हैं। कन्याओं माताओं को जो शिव बाप के प्रति अर्पण होती हैं, उनको गंदी दृष्टि से देखते हैं, माता के रूप में देखना चाहिए, अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए, देखना तो चाहिए आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना चाहिए, लेकिन माया रूपिणी जो काम विकार की आग है, लगते लगते ऐसा रूप धारण कर लेती है जो क्रोध का वातावरण में बदल देती है और परमात्मा बांब ग्लानी का फोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा इशारा अभी 23 तारीख की अव्यक्त वाणी, जिसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम संदेश कहा है, जिसका क्लैरिफिकेशन लंबे लंबे व्याख्यान के रूप में निकल चुका। उस संदेश के बारे में कहा कि ये संदेश जल्दी से जल्दी चारों तरफ जाना चाहिए, लेकिन संदेश जिस मुख से निकल रहा है वो रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, आवाज प्रत्यक्ष होना चाहिए, सारे संसार में वो आवाज जानी चाहिए, लेकिन रथ किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। ये बातें किससे बोली? तुम बच्चों से बोली, इनसे बोली या उन बच्चों से बोली? हा? हा? अरे ब्रह्मा की वाणी गुलजार दादी के द्वारा जो आती है, उस वाणी की गुह्यता को तुम बच्चे समझते हो, ये बच्चे समझते हैं, इनके फॉलोअर्स समझते हैं या वो बच्चे समझते हैं? है? तुम बच्चे माने कौन है? अरे रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो बच्चे कौन होंगे? है? रुद्रमाला के बच्चे बीज रूप आत्माएं होंगी ना? रुद्रमाला पहले बनेगी या विजयमाला पहले बनेगी? रुद्रमाला पहले बनती है, रुद्र वत्सों का संगठन पहले बनता है, तो वो रुद्रमाला के बच्चे चाहे भी किसी भी धर्म के बीज होकर आए हों, वो कन्वर्ट होकर के पहले पहले सूर्यवंशी बनेंगे या उनकी प्रजा पहले बनेगी? जो जन्म जन्मांतर हर राजा की प्रजा बनने वाली है, पहले सूर्यवंशी बच्चे 108 की माला में आने वाले बनेंगे ना, उनसे भी पहले जो जन्म जन्मांतर सूर्यवंश में रहकर पाठ बजाने वाले हैं, ज्ञान सूर्य का सहयोग देने वाले हैं, वो 8 हैं, वो भी माला रूपी संगठन है। तो उन बच्चों से बोला क्या कि तीसरा रथ लिया है, सुवाणी में क्लियर कर दिया, पहला रथ ब्रह्मा का, दूसरा रथ प्रत्यक्ष हुआ गुलजार दादी, और तीसरा रथ कौन सा लिया है, नाम रूप तो नहीं बताया, लेकिन हम बच्चे तो जानते हैं, हैं? तो जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बोला कि वो रथ संसार में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए अभी, जब तक पूरी राजधानी का संगठन तैयार न हो जाए। आवाज जानी चाहिए, सारी दुनिया में आवाज जानी चाहिए, इन बच्चों तक भी आवाज जानी चाहिए, किन बच्चों तक, जो इस शरीर से पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन इस शरीर से संगमयुगी शरीर साकार से सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते योग की। उनका हेड कौन है, है? दादा लेखराज ब्रह्मा, धर्म का राजा। कौन है? धर्म का राजा धर्मराज, जो बोला मेरा राइट हैंड धर्मराज भी है, लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है, उसको बताया वो धर्मराज किसके ऊपर सवार होता है। अरे चित्र नहीं देखा है, है? हाँ, भैंसा के ऊपर सवार दिखाया जाता है, है? कौन हुआ भैंस बुद्धि, है? जो बोला दिलवाड़ा मंदिर में भी उसकी यादगार रखी हुई है, कॉर्नर वाली काली कोठरी में काला देव बैठा हुआ है, अंधेरी कोठरी में है, काला मुंह वाला है या गोरे मुंह वाला है, है? काला मुंह वाला है, महाकाल कहा जाता है, काल के ऊपर भी विजयी है, काल 5000 वर्ष के समय चक्र को कहा जाता है, उस 5000 वर्ष के समय चक्र को भी क्रॉस कर जाता है या नहीं करता है, है? है? क्रॉस कर जाता है, जिसको श्याम कहा जाता है, लेकिन वही पहले नंबर में सुंदर बनता है, तो दोनों शब्द मिला के क्या कहा जाता, श्याम सुंदर। तो ये त्रिमूर्ति शिव कौन है, हैं? उस त्रिमूर्ति शिव में जिसकी यादगार त्रिमूर्ति हाउस या त्रिमूर्ति रोड है, वो शिवलिंग उसमें शिव की सोल जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उस शिवलिंग में उस सोल की यादगार, सुप्रीम सोल की यादगार है या नहीं, जो सुप्रीम सोल शिव कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। शिवलिंग पूज्य है या नहीं है, पूज्य है। और जो पूज्य है वो द्वापर युग से पुजारी बनता है या नहीं बनता है, किस रूप में, कौन बनता है पुजारी? अरे सीढ़ी चित्र में नहीं दिखाया, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है, कोई इतनी अकल है कि शिवलिंग का चित्र बनाए, मूर्ति बनाए और उसकी पूजा करे। जो द्वापर युग से राजाएं होते हैं वो विकारी बुद्धि राजाएं होते हैं या निर्विकारी बुद्धि राजाएं होते हैं? उनकी बुद्धि में ऐसा श्रेष्ठ चित्र जिसकी इतनी गहराई है कि जिसकी गहराई की व्याख्या दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका, कोई नहीं बता सकता ये शिवलिंग क्या है भारत में, जो गांव-गांव में शहर-शहर में पूजा जाता है, जिसकी यादगार बनी हुई है, जो देश विदेश में खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में शिवलिंग मिले हैं। ये है कौन? क्यों इसके सामने जाकर माथा रगड़ते हैं? पहले पहले इसके चारों तरफ मंदिर में शंकर की मूर्ति रखेंगे, हनुमान की मूर्ति रखेंगे, गणेश की मूर्ति रखेंगे, जगदम्बा की मूर्ति रखेंगे, सभी देवताओं की मूर्ति रखते हैं। तो वो सब पुजारी हुए उस शिवलिंग के या नहीं हुए? सब पुजारी हुए। और सारे भारतवासी जाकर के उस शिवलिंग को पूजते हैं। पूजा पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्रता का प्रूफ मिलेगा तब पवित्र माना जाएगा या बिना प्रूफ के पवित्र माना जाएगा, है? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो एवर प्योर कौन है, तो बिंदी की तरफ इशारा कर देंगी, 32 किरणों वाले शिवलिंग की तरफ कि ये एवर प्योर है। अरे वो बिंदु एवर प्योर है, इसका प्रूफ तो कोई बताओ, प्रैक्टिकल में प्रूफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या है? हाँ, जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए योगी भी है, कर्म योगी है। ऐसे नहीं दुनिया के सामान्य मनुष्यों की तरह इंद्रियों से कर्म तो करता है, इंद्रियों का रस तो लेता है, लेकिन योगी नहीं है कोई। इंद्रियों से भोग भोगते हुए, इंद्रियों का रस लेते हुए भोगी बन जाते हैं या योगी बन जाते हैं? भोगी बन जाते हैं। और वो शिवलिंग किसकी यादगार है? हैं? जो शिवलिंग मेल लिंग होते हुए भी फीमेल के साथ रखा हुआ है, जिसे जलाधारी कहते हैं, ज्ञान जल का आधार लेने वाली, प्रैक्टिकल जीवन में क्या सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने वाली नहीं, सिर्फ ज्ञान को
एडवांस पार्टी वालों की तरह
समझने समझाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल में धारण करने वाली ज्ञान जल को कौन गाई हुई है? जिसके लिए गायन है, वरों शंभु न तो रहो कुआरी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी। क्या जिस आत्मा का गायन है, क्या तो जन्म लेकर कुआरी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी जीवन भर, या तो वरण करूंगी, तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी हीरे के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है, उसी से वरण करूंगी, और किसी आत्मा का संग नहीं करूंगी। तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, नौ देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो स्वर्ग का गेट खोलने वाली, पुरुषों को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सब पुरुष उस स्थिति में जब होते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय से कर्म करते हैं एकांत में, तो दुर्योधन दुशासन बने बिगर रह नहीं पाते। तो पुरुषों को ज्ञान का कलश नहीं दिया प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का कलश शास्त्रों में किसको दिया गया है? अरे उस एक का नाम बताओ है, लक्ष्मी को दिया। तो जो लक्ष्मी नामधारी है, लक्ष्य को मुझ तक सीमित कर लिया, माने मैं आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी, तो वो आत्मा जो ज्ञान जल में ही रहती है प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम विकार का रस नहीं भोगती, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से कर्म भले करे लेकिन मन बुद्धि से आत्मा से उपराम रहती है, या इंद्रियों के रस में आसक्त होती है, हैं? उपराम रहती है, तो उसको कहेंगे क्या? अर्धनारीश्वरी के रूप में एक के साथ मिलकर क्या हो जाती? मन मना भव एक हो जाती। स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा मिलकर क्या बन जाती? एक बन जाती है, जिसका गायन है अर्धनारीश्वर है, आधी स्त्री आधा पुरुष, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योरिटी का पक्का प्रूफ। दो शरीरों का मिलन नहीं, आत्मा और शरीर के मिलन की बात है। आत्मा है परम पुरुष शिव समान, और लिंग है जो सोमनाथ के मंदिर में लाल रंग का पत्थर दिखाया गया था, माता का रूप, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। बड़े से बड़ी माता कौन हुई है? अरे ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ी माता कौन हुई? परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जो है, उसमें जो सृष्टि के पांच तत्व हैं विशाल रूप में फैले हुए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का संघात रूप प्रकृति प्रकृष्ट रचना साकार रूप में भी है, और परा प्रकृति के रूप में जो गीता में बताया गया है, चैतन्य आत्माओं का भी संघात है। वो चैतन्य आत्माएं देवताओं के रूप में गिनी जाती हैं, पृथ्वी देवता जल देवता वायु देवता अग्नि देवता देवताओं के रूप में चैतन्य हैं या नहीं? चैतन्य हैं, लेकिन जड़ तुम्हारी बुद्धि वाले, वो जड़ तुम्हारी बुद्धि वाले पृथ्वी में समाये रहते हैं, पृथ्वी के गर्भ में। पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसमें पांचों तत्व हर समय रहते हैं। पृथ्वी का कोई हिस्सा एक मुट्ठी लो, उसमें मिट्टी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, और आकाश भी है। पांचों तत्व पृथ्वी में सदैव समाये हुए हैं, जैसे माता के गर्भ में बच्चा समाया हुआ होता है, जो प्रारंभिक रूप में बच्चा निर्जीव होता है या सजीव होता है? निर्जीव पिंड होता है पांच तत्वों का संघात। ऐसे ये परम ब्रह्म है माता, इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माता। शरीर का नाम दिया या आत्मा का नाम दिया है? शरीर का नाम दिया परम ब्रह्म। जड़त्वमयी शरीर है, पत्थर बुद्धि शरीर है, ग्रेनाइट का बड़े से बड़ा पहाड़ है या चैतन्य है? है पत्थर बुद्धि। वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो पुरुष तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं या माताएं तीक्ष्ण बुद्धि होती है? है कौन होते हैं? है माताएं होती हैं। है माताएं अगर होती भी है इंदिरा गांधी जैसी तो सत्यानाश करके जाती है या सतयुग स्थापन करके जाती है? है क्या करके जाती है? है इंदिरा गांधी नाम ही क्या है? है इन माने अंदर, दरा माने डर भरा हुआ है, गंदी माने गंदे काम किए हैं, मुसलमान के साथ शादी कर ली। अरे भारतीय कन्या होकर के मुसलमान के साथ शादी कर ली तो अच्छा काम हुआ है? ये अच्छा काम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। भारतीय परंपरा के अनुसार तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो बताया कि हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक माया बेटी है जिसका नाम दिया ब्रह्मवाणी में, उसके भी अंदर दुष्कर्मों का डर भरा रहता है। गंदे काम करने वाली है, इसलिए नाम देते हैं काम के आधार पर। माया बेटी, बाप के घर में आती है या नहीं आती है? है? अरे आती है या नहीं आती? आती है। अच्छा, त्रिमूर्ति हाउस की बात हो रही थी। त्रिमूर्ति हाउस में वो माया बेटी आती है या नहीं आती है? आती है। अरे त्रिमूर्ति हाउस जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर, उस स्वर्ग में माया बेटी आती है? हैं? कभी आती है कभी नहीं आती है। आती है स्वर्ग में? हैं? स्वर्ग में नहीं आती है। जो बाप की रचना है उस स्वर्ग में नहीं आती है, लेकिन बाप के घर में आती है या नहीं आती है? क्या पहचान बताई? पहचान बताई कि माया मुख से मत नहीं देती है। ब्रह्म वाक्य याद कर लो, माया मुख से मत नहीं देती है, कर्म ऐसे करके दिखाती है। तो बाप का घर जो यादगार शिवलिंग है, वो शिवलिंग कर्म कर रहा है, उसमें माया का पुट है या नहीं है? जिसको देखकर संसार के लोग वही कर्म करने लगे। जो माया कर्म ऐसे करती है, मुख से मत नहीं देती, वो कर्म जो शिवलिंग का दिखाया गया है वो मायावी कर्म है या ईश्वरीय कर्म है? कर्म कैसा है? हैं? अरे कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म दिखाया गया वो कर्म भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा भ्रष्ट कर्म होगा या श्रेष्ठ कर्म होगा? हैं? भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा तो भ्रष्ट कर्म ही है दिखाया गया, लेकिन वो शरीर का कर्म है, शरीर का धर्म है, सूक्ष्म शरीर का भी कर्म हो सकता है। जो माया बेटियां होती हैं, वो बाप को भी बरगला लेती हैं। जो मुरली में बोला कि आज की दुनिया में बाप बच्ची को नहीं छोड़ते, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, तो उनके अंदर माया बेटी काम करती है या नहीं करती है? बेटी बाप को बरगला सकती है या नहीं बरगला सकती? बरगला सकती है। इसलिए भारत में परंपरा अभी भी चल रही है कि बेटी समाज में अगर नौजवान हो जाए तो समाज के लोग उसे घर में नहीं रहने देते, विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? विरोध करते हैं। तो माया बिटी कर्म करके दिखाती है, मुख से नहीं बोलती है कि ऐसा करो, लेकिन असलियत क्या है? है उस कर्म की असलियत क्या है? और वो असलियत मन बुद्धि की बात है, समझना समझाना कि शरीर के कर्म की बात है, मन बुद्धि की बात, मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये समझ होनी चाहिए कि वो कर्म करते हुए भी वो लिंग और वो जलाधारी ज्ञान जल को धारण करने वाली माता क्यों पूजी जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एवर प्योर होने का प्रूफ दिखाया है। क्या प्रूफ? जो लिंगधारी आत्मा है कौन? शिव या शंकर? है शंकर। वो लिंगधारी आत्मा एवर प्योरिटी का प्रूफ है भारतीय शास्त्रों में, अमोघवीर्य। कैसा भाई? अमोघवीर्य। ऐसा अमोघवीर्य जो देह का अंश है, वीर्य देह का सत्व है, देह के अंदर सबसे सार चीज कौन सी है मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में है वीर्य, सार चीज है, वो सार चीज देह का अंश है। देह का अंश होते हुए भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस भ्रष्ट इंद्रिय के अंदर ही कंट्रोल किया जा सकता है, भ्रष्ट इंद्रिय के योग बल से परिपूर्ण करके। इंद्रियां योग बल में सराबोर हो जाएं, शीतल हो जाएं, इंद्रियों में बहुत गर्मी आती है तब ही वीर्य स्खलित होता है। ये योग बल ऐसी चीज है जिससे इंद्रियां कैसी बन जाती? शीतल बन जाती। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य गाया जाता है। और कोई देवता नहीं है जिसकी लिंग इंद्रिय पूजी जाती हो, और सभी इंद्रियां पूजी जाएंगी लेकिन लिंग किसी देवता का नहीं पूजा जाता। क्यों? इंद्रिय जीते जगत जी, काम जीते जगत जी। काम इंद्रिय की ही बात है और इंद्रियों की तो इतनी बात ही नहीं है, ज्ञानेंद्रियों की भी बात नहीं, कर्मेंद्रियों की भी बात नहीं। भ्रष्टता आती है, पतितपना आता ही है काम विकार से, काम इंद्रिय से। क्रोध से पतितपना नहीं आता, भले आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, लाल लाल हो जाता है, लाल हो जाता है कि काला हो जाता है? लाल है क्रोध में, क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं या काली हो जाती हैं? लाल हो जाती है। तो बताया कि ये मन मना भव का जो अर्थ है यही रूहानी यात्रा है। किसके मन में समा जाना? जिसका मन संकल्प हो गया, बिंदु रूप बन गया, उसके बिंदु रूप स्वरूप में समा जाना। कौन समा जाएंगे? बच्चों को बताया क्या त्रिमूर्ति सेवा का जो रास्ता है वो बच्चों को बताया कि मन मना भव का अर्थ क्या है, है? किसमें समा जाना, मन के संकल्पों को किसके एक संकल्प में तिरोहित कर देना, समा देना, हमारे अंदर अलग संकल्प, उनके अंदर अलग संकल्प, हरेक के अंदर अलग 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 संकल्प चल रहे हैं, चलते हैं या नहीं है? हाँ, ये संकल्प रूपी बुलबुले सागर में उठते ही रहते हैं, समाते रहते हैं, उठते रहते हैं, समाते रहते हैं, जन्म जन्मांतर यही होता रहता है। लेकिन क्या करना है, ये संकल्पों के जो भी बुदबुदे हैं वो सारे संकल्प एक के संकल्प में समा जाएं। एक का क्या संकल्प है, जो झाड़ के ऊपर बैठा दिखाया गया, अरे एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक ज्योतिबिंदु दूसरा ना कोई, वही स्मृति है को कोई दूसरी स्मृति है? तो 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को किसमें समाना है आखिरी है? अरे जो गीता में लिखा है जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत की वो अव्यक्त मूर्ति है जिसको हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाए जाते, देखने में आते हैं शिवलिंग में नहीं आते, इसलिए अव्यक्त है, व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न देखने योग्य। उस अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया समा जाएगी, उसी से सारी दुनिया निकलेगी। जैसे कोई भी दुनिया का परिवार हो, 10 20 50 बच्चों का बाप एक, उस एक बाप से ही सारे बच्चे पैदा हुए, छोटे बड़े या एक जैसे, सब छोटे बड़े, सब के अंदर स्वभाव संस्कार सब अलग अलग, एक का चेहरा न मिले है? एक का चेहरा न मिले, एक का शरीर न मिले दूसरे से, तो सारी मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार जिसे कहा जाता है जो गायन है वसुधैव कुटुंबकम, इस दुनिया में कभी ऐसा भी समय था कि सारी वसुधा सारी पृथ्वी के लोग चाहे किसी भी के धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई थे, बोलने के लिए भाई भाई नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में भी भाई भाई बनकर रहे थे। ऐसी राजधानी तुम बच्चों की स्थापन होती है। ओम शांति।